शांति, शांति के सागर, ज्ञान के सागर, पतित पावन बाप, हम बच्चों को कर्मातीत बनने की, विकर्माजीत बनने की, पास विद ऑनर होने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कर्मातीत किसको कहा जाता है? कि किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म, पिछला कर्म उस पर भी जीत, पिछले भी कर्म भी भस्म हो, अतीत काल पुराना कर्म का हिसाब किताब, न केवल अपना परंतु किसी दूसरे का किया हुआ कर्म, विकर्म हमारे पर प्रभाव न डाले। तो कर्मातीत का मतलब न इफेक्ट हो न डिफेक्ट रहे। कर्म का हिसाब किताब तब बनता है जब हम किसी के कर्म से दुख ले लेते हैं, वो दुख कर्म कर्मन का भोगना हमारी, क्यों नहीं क्यों है भोगना, क्योंकि किसी के कर्म को विकर्म को मैंने माफ नहीं किया, और नहीं किया तो मेरा दिल साफ नहीं रहा, न स्वच्छ रहा, न शांत रहा, न सुखी रहा। तो वो मेरे सामने जो जितने टेस्ट आए मेरी अवस्था को चेक करने के, उस अवस्था में मैंने व्यवस्था ठीक नहीं रखी। डबल अहिंसक का मतलब अपने आप को भी दुख न देवे, दूसरे को भी दुख न देवे। क्रोध करना माना अपने आप को दुख देना, काम विकार माना अपने आप को भी दुख और दूसरे को भी दुख, अहंकार माना अपने आप को भी सूक्ष्म में नाम का, मान का, शान का, अभिमान का भय, कम ना हो जावे मेरा मान, और दूसरे के लिए अपमान। तो वो एक हमारी पढ़ाई है विकर्मा जीत बनने की। विकर्मा जीत का राज्य है सत्युग में, हम राजा तो बन रहे हैं, विकर्मा जीत बन रहे हैं, कर्मातीत बन रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा बहुत प्रेम से हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सहज योग सिखा रहे हैं, पर मेहनत बाप को करनी पड़ती है। हमारे लिए सहज योग है, कहते मैं तुमको कोई मेहनत नहीं देता हूं, पर खुद मेहनत हमारे पर बहुत करते। परमात्मा बाप ने प्यार से सब समझाया, ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत करके तैयार किया, हमारा श्रृंगार किया, इसीलिए गीत में सुना तुम्हारी याद बहुत आती है। इसलिए याद आती है कि आपने हमारे पर इतनी प्यार से कृपा की, दया की, हम आत्मा को पत्थर से पारस बनाया, अज्ञानी को ज्ञानी बना दिया, माया ने हमको अंधा बना दिया था रावण ने, यानी हमारे ज्ञान नेत्र को बंद कर कर दिया था, ज्ञान नेत्रहीन को अंधा कहा जाता है। ज्ञान माने लाइट, ज्ञान माने रोशनी। तो जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहा, अज्ञानी बन गए, तो अंधे बन गए ना। इसलिए नैन इनको राह दिखाओ प्रभु। तो प्रभु ने अपना बना के, अपना बच्चा बना के न केवल हमको त्रिनेत्री बना दिया, तीसरा नेत्र कल है ना, कल बताया ना बाबा ने, मैं तीन सितारे देख रहा हूँ चमकते हुए तुम्हारे नैनों में, तुम्हारे मस्तक पर तीन सितारे चमक रहे हैं, टीचर त्रिनेत्री बना देते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते हैं। तो अपनापन तो उससे पहले बचपन का सुख, बच्चा बन गए तो बच गए सब प्रकार के दुखों से, बच गए नया पाप कर्म करने से, बच गए दूसरे के प्रभाव से दुखी होने से। तो ना प्रभाव रहा ना अभाव रहा, रिजल्ट क्या हो गया, स्वभाव सुंदर हो गया। प्रभाव और अभाव से ही स्वभाव बदल जाता है। तो स्थित परे हो गए और स्वयं के भाव में स्थित हो गए तो स्वभाव शीतल सुंदर शांत हर्षित कल्याणकारी बन गया। और स्वभाव श्रेष्ठ है, उसका आधार है स्वमान में, सम्मान में रहना, सम्मान देना और ड्रामा को स्वीकार करना। क्यों बदलता है स्वभाव की ड्रामा को साक्षियों करके नहीं देखते, तो हमारा भाव बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता। बाबा ने बच्चा बना करके डबल अधिकारी बना दिया, तो बचपन के दिन भूला न देना। बच्चा बन गया आज हंस रहे हो, भूल गए तो रोना पड़ेगा। आज हंसे कल रोला न देना, अपने जीवन को भी नहीं रुलाना, दुखी भी नहीं होना। तो फिर तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम अमरनाथ बन जाते हो, मृत्यु का भी भय नहीं रहता, मृत्यु भी अपने मृत्यु के भी मालिक बन जाते हो, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हो। 27 जनवरी की मुरली सुनते हैं, ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे, पास विद ऑनर होंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बन जावे। मेहनत करते हैं कि स्वर्ग में जाने के लायक बने। 16 कलव संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप और दादा दोनों करते हैं। जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही ले लेते हो। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, ओम शांति। मीठे मीठे सीखे लगते बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड लिए थे, कोई कोई बहन बहुत शौकीन थी तो जब भी रिकॉर्ड नया आता था मामा को कहती थी, मामा ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हम ले में बहुत अच्छा मीनिंगफुल है। तो जब बाबा ने देखा ये तो शौक होता जाता है रिकॉर्ड लेने का, तो फुल बास्केट मतलब बॉक्स भरा हुआ था, 60-70 से ज्यादा ही रिकॉर्ड थे, उसमें से बाबा ने सिर्फ 12 रिकॉर्ड सेलेक्ट किए। तो आप देखेंगे ये 12 रिकॉर्ड रिपीट होते हैं अलग अलग मुरली के समय। तो आज का गीत है बचपन के दिन भुला न देना। अच्छा, ये रिकॉर्ड क्यों शुरू किए? लोगों को आश्चर्य होता है, सुनो मुरली में ड्रामा प्लानर्स और ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं, मनुष्य चकित होते हैं, हैरान होते हैं कि क्या ये रॉक ने कर्नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए और रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है, तो भक्ति को ज्ञानियों को हैरानी होती है। पर बाबा जानते हैं राज को, हमारे विचारों को बदलने के लिए, हमारी दृष्टि को बदलने के लिए, हमारी फीलिंग्स को बदलने के लिए बाबा ने ये बहुत अच्छी प्रैक्टिकल में युक्ति रची। क्योंकि भारत में तो जब इकट्ठे घर होते हैं एक ही आंगन में, एक ही मकान में, आंगन एक या चार लोग, छह परिवार रहते हैं, हर एक के घर में रेडियो बज रहा है, किसी के घर में दुकान में है संग रिकॉर्ड बज रहा है, शादी होती है लाउड स्पीकर पर रिकॉर्ड बजता है, फिल्म का रिकॉर्ड बजता है, तो नेचुरली वो फिल्म सामने आएगी। बाबा ने वो रिकॉर्ड रूहानियत के संबंध से जोड़ के योग ऐसा पक्का करा दिया, क्योंकि मीनिंग ही बदल दिया। अब वो बचपन के दिन हम बच्चे हो, बच गए हो, स्वर्ग की बादशाही लेते हो। तो एक एक गीत का अर्थ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने का डर ही छुड़ा दिया, जनाया जन्म दे के अमर बना दिया। तो फिर हम लोग क्या गीत बजता था तो आज की मुरली में बाबा ने क्या बसाया, वो मुरली याद आती थी, बाबा का मधुबन सीन याद आता था, फिल्म का याद का अवसर ही नहीं होता था, फिल्म देखी हुई फिल्म भूल जाती थी। सब वृत्ति बदल जावे, दृष्टि बदल जावे, मीनिंग बदल जावे, फीलिंग बदल जावे, तो हमारे लिए तो वो जैसे एक बहुत ही सहज युक्ति हो गई, लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगता है। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है, बचपन के दिन भुला न देना। जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप तक धोते हैं। ऐसा न हो याद को छोड़ दो और पाप रह जावे, पाप भस्म न हो जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। तो ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कितनी याद कैसी होनी चाहिए, फिर लौकिक एग्जाम्पल दिया, जैसे सगाई हो जाती है कुमार और कुमारी की, तो फिर एक तो कोई को याद करते है ना, तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तो विष्णुपुरी में जाओगे। अभिषेक बाबा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है, तो तुमको दो इंजन मिले हैं। कल बाबा ने कहा ना, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए दो इंजन ऊंचा चढ़ने के लिए। तो दो इंजन है, एक है निराकारी, दूसरा है साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं, किसलिए? प्यार का सागर है, किसलिए मेहनत करते हैं? क्या भावना है कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी पास स्वर्ग के लायक बनना है तो पास भी दोनों होना है, तो इम्तहान कहाँ होगा? यहाँ ही इम्तहान होगा ना, सब पास जाएंगे ना नेक्स्ट वर्ल्ड में। यहाँ इम्तहान पास करना है। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है और भविष्य की जन्मों के लिए पढ़ते हैं। और कोई पढ़ाई होती है तो मृत्यु लोक में ही, मृत्यु लोक के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, पर ये पढ़ाई तो अमर लोक के लिए है, अमर पद पाने के लिए। इसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना, फिर पवित्र पवित्र भी बनना है। यहाँ जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा नहीं सकती, इसलिए बाप संगम युग पर ही आते हैं। इसको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। कौड़ी से हीरे जैसा बनना है तो श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में है फूल जो चक्कर से नहीं आ रहा है, शिव बाबा फूल, वो माला फेरते हैं ना तो फूल को नहीं उलांघते, फिर बंद करते हैं माथा, फूल को माथा टेकेंगे, फिर वापस जहां लास्ट था उसको फर्स्ट नंबर रख के फिर माला फेरेंगे। श्री श्री शिव बाबा को कहा जाता है। तो माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में है फूल, फिर है युगल मेरु, मेरु कहते उस डबल दाने को, प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर जो दाने हैं, जो विजय पाने वाले हैं, उनके ही रुद्रमाला, पहले वो परमधाम में जाते हैं तो रुद्रमाला कहलाती है। बाबा के प्यारे बच्चे गले के हार, वही फिर विष्णु की माला बनती है, विजयी रतन, फिर सतयुग में आते हैं। अब इस माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते तो बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चों, कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। कौड़ी मैंने खोखली खा ली, वैल्यू कुछ नहीं, और हीरे जैसा बनना है, वैल्यूबल बनना है। कौड़ी टूटती जल्दी है, खोखली होती है, हीरा टूटता नहीं है। तो जल्दी जल्दी अवस्था को खराब ना करो, तोड़ो नहीं। इसलिए सरगर्म तुम बाप को याद करते आए हो। अब आशिक हो एक माशुक के, सब भक्त हैं भगवान के, उनको ही पतियों का पति, बापों का बाप कहा जा सकता। वो ए रही है सब पतियों भगत, चाहे नर हो चाहे नारी हो, प्रेम से परमात्मा को याद करते हैं। बाप तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते। बाप बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कहते कि आत्मा निर्लेप है, पर बाबा कहते कि संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है ना नेक्स्ट बर्थ में। वो कह देते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे बुरे आत्मा में ले जाते हैं। सेकंड पॉइंट परमात्मा के बारे में, वो कह देते हैं बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ये सब लीला है। तो उल्टे काम करते हुए कहेंगे भगवान सब काम करा रहा है, विकार विकारी कर्म भी है भगवान करा रहा है, भगवान प्रभु इच्छा। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कीमत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं, ये भी ड्रामा में नूर है। यानी पाप कर्म करते जाओ आत्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उल्टा रास्ता दिखाया ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। तीसरी बात, अभी वो नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा बुद्धि में यस अपनी स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए, खुश बनाने के लिए, हमेशा बुद्धि में तीन धाम याद रखो। पहली बात शांति धाम, जहां से आत्माएं आई हो, जहां आत्माएं रहती हैं। फिर सुख धाम, जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। और फिर ये दुख धाम, इससे वैराग, पीछे दुख धाम में आते हो, इसलिए पहले दुख धाम को याद नहीं करो, पहले शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। और तो आधा कल्प के बाद दुख धाम में आएंगे ना, भगवान को याद करने। तो भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, अब वो कोई हेल्थ थोड़ी स्थापन करते हैं, और फिर ड्रामा रिपीट होगा, फिर दुख आएगा। हेल्प को पहले याद करते हैं नहीं, पहले शांति रिपीट करने का मतलब वापस घर जाना है, चक्कर शुरू होने तो पहले वापस घर जाना है, फिर स्वर्ग में आना है, फिर दुख में आए, अब उससे तो वैराग रखने। बाप कहते मैं तो सुख धाम की स्थापना करता हूं, बाकी ये खेल है हार और जीत का। तो तुम बच्चे श्री मत पर चल, अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, ये बुद्धि में धारण करना है, फिर समझाना है। अंधों की लाठी बनकर घर का रास्ता बताना है, क्यों कि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, यह भी भूल हो गई। अभी बाप सब बातें समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना अंधा नैनहीन बना दिया। फिर बाबा बताते हैं कितना रॉन्ग बातें समझी, तो बाबा फिर सही बात समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाला है। नॉलेजफुल है। अब जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं तो अंदर की बातें सुना लेते हैं, परंतु नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है। बाप तो आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, वो नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है कि बस तुम्हारे अंदर की बातों को बैठ के पढ़े। नॉलेजफुल परमात्मा की महिमा है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। अब वो तो कह देते हैं अंतर्यामी, अभी तुम समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वो रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। जो जिस्मानी टीचर होते हैं, बाप है परंतु टीचर है, गुरु तो अलग होता है ना, तीनों एक नहीं हो सकते। करके कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो नहीं हो सकता। वह तो फिर मनुष्य ही है ना, सतगुरु तो एक परमात्मा को कहेंगे। यहां तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फिर नॉर्म तीसरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट कौन सा है, आत्मा को परमात्मा कह देते, आत्मा को निर्लेप कह देते, या फिर परमात्मा सर्वव्यापी है सब चीज में है, या फिर आत्मा को परमात्मा कह देते। कितनी अज्ञानता है। तो बाप कहते हैं, फिर चौथी बात, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, कोई समझते नहीं है। फिर चौथी बात क्या है, कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, यानी परमात्मा का रूप, और उसकी माइट कौन सी है, लाइट कौन सी है, भस्म करने वाली लाइट नहीं, शरीर भस्म करने वाली लाइट नहीं है। अब ये जो सुना है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया विराट स्वरूप का, उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। कहते हजारों सूर्य से ज्यादा तेज में है। ये भी भक्ति का कॉन्सेप्ट है। ये जो सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजो में है। पहले बाबा के पास भी आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, तो बहुत तेज देखते थे, तो कहते थे बस करो बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते। कोई कोई की आंखें बिल्कुल रेड लाल हो जाती थी। बाबा ने कहा जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। तो भक्ति में जिस बाप भावना से याद करते हैं, बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। मानो कोई ने गणेश की पूजा की, गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, साक्षात्कार से कोई मुक्ति धाम में नहीं चला जाता। साक्षात मुक्ति धाम सुख नाम में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। नारद का मिसाल है, शिरोमणि भक्त गाया हुआ है, ऊंचा भगत, उसने पूछा लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो उसको शक्ल दिखाई, शक्ल देखी तो बंदर जैसी, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो, नारायण को लक्ष्मी को करना चाहते हो। फल माला भी होती है तो भक्त माला में नारद का मिसाल है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाये हुए है। यहाँ फिर बाबा के पास फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती जगदम्बा माँ, मम्मा के लिए बाबा कहते। नंबर वार तो होते हैं ना, अटेंशन, बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी जो फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ना दे सके, फिर जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बन गई। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये नाम भी है ना, स्टेजेस है ना। अभी आयरन एज से तुम फिर गोल्डन एज में जाना है तुमको। अब गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? पवित्र बनने बगैर आत्माएं जा नहीं सकती, क्योंकि सतयुग है सुख की दुनिया, सुख शांति संपत्ति की दुनिया। तो सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, पवित्रता थी तो सुख और शांति भी थी। यहां प्योरिटी नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। रात दिन का फर्क है। तो बाबा फिर कहता, अभी तुम बच्चे बने हो ना, तो तुम्हारे पास सुख शांति प्रेम पवित्रता सब कुछ का अनुभव है। तो बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ये अडॉप्शन होती है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बच्चों को क्रिएट किया जाता है। इसलिए स्त्री को रचना नहीं कहते। ये बाप भी अडॉप्ट करते हैं तो हमारे वही बच्चे हो जिनको कल पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, ऊंचे से ऊंचे बाप से ऊंचा वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में श्री लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। तो अब बच्चों को भगवान क्या बना रहे हैं? अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, संपूर्ण नहीं बने हो। इसलिए बाबा पढ़ा पढ़ा के लायक बना रहे हैं, बन रहे हो। अच्छा, फिर बन के क्या करना है? बन गए, पावन बन गए, फिर तुम्हारा काम क्या है? पावन बन करके पावन बनाना, ये है रूहानी सच्ची सेवा। पावन बन के पावन बनाना ये रूहानी सच्ची सेवा है। और अभी तुम रूहानी सेवा करते हो इसीलिए तुम ऊंचे हो, पुरुषोत्तम कहा जाता है। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुमको तुच्छ बुद्धि बना दिया, रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया। अब बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। और ऐसा बाप जो लायक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला, उनको पत्थर ठिकर में कैसे कह सकते हैं? वो पत्थर है, पत्थर है, ठिकर है, वो पढ़ाएगा कैसे? तो बाप कहते हैं ये भी खेल बना हुआ है, कल अब बात फिर ऐसे होगा। ड्रामा प्लानन साहब में आया हूं फिर से समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की भी देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम आत्माएं भी, जैसे बाबा इनकार्नेट होता है, इनकार्नेशन, इनकॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आता है, ऐसे तुम भी एक बारी आते हो फिर दोबारा कोई जाते नहीं हो वापस, जो तुमको तुम्हारा रीइनकार्नेशन हो, रीबर्थ होता है पर रीइनकार्नेशन नहीं होता। पर हर कलप कलप बाबा का रीइनकार्नेशन होता, तुम हर बर्थ के बाद रीइनकार्नेशन नहीं होता, एक खेल बना हुआ। बाप कहते हैं जैसे बाबा का रीइनकार्नेशन होता है, तुम बच्चों का भी रीइनकार्नेशन होता है, तुम अवतरित होती हो, ऊपर से आती हो, या हर कल्प तुम्हारा रीइनकार्नेशन होता है, तुम ऊपर से आती हो, उतरती हो, और आत्मा यहाँ साकार में आकर पार्ट बजाती है। इसका नाम अवतरण है अथवा रीइनकार्नेशन है, ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है, पर बाप कहते हैं मेरा रीइनकार्नेशन को मैं कोई जन तुम्हारी तरह बार बार नहीं शरीर लिया शरीर छोड़ा, नहीं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा अपना शरीर है ही नहीं जो शरीर लेना शरीर छोड़ना पड़े, ये मेरा मुकर्रर तन है, ये बहुत वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट मुंडा हुआ है जो बजाते रहते हैं, और 21 जन्म का पार्ट फिर ऐसा ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, महारथियों की महिमा बाबा करते हैं ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब बनावटी बातें हैं। अभी तुम समझते हो वो तो है जिस्मानी मनुष्य कौरव और कौरव यादव, जिस्मानी डबल अहिंसक, डबल हिंसक, काम विकार भी है और क्रोध भी है। तुम हो रूहानी डबल अहिंसक, न दुख देने वाले न दुख लेने वाले, बादशाही लेने के लिए तुम यहां बैठे हो। कैसे बैठे हो? साधारण जानते हो कि बाप की याद से ही भी कर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है, मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वो बाहर वाले भी भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे, वास्तव में सिखलाते कुछ भी नहीं है, भारत का प्राचीन योग नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? उन्हों का संन्यास है हठ योग का, वो हठ योग का राजसिक योग सिखाते हैं, संन्यास का योग सिखाते हैं, और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो न केवल तुम सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग ऑर्डिनरी, पर तुम्हारी तो शुरू में किंगडम थी, राजाई भी मिलती है तुमको, अभी अंत है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है, डेमोक्रेसी है, पंचायती राज है, कोई राजाई नहीं है किसी के पास। दुनिया में अंधकार तो बहुत है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तुम जानते हो अभी तो खूनी नाहक खेल होना है। ये भी एक खेल दिखाते हैं जो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा, इनको खूने नाहक खेल कहा जाता है। यानी किसी का कोई दोष भी नहीं, एटम बम गिरा, कितना विनाश हुआ, प्रकृति आई, कितना नुकसान हो गया। तो खूने नाहक खेल, इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए। तुम शिव शक्तियां हो ना, कैसे बनती हो शिव शक्तियां? पांडव भी शिव शक्तियां हैं, कैसे बनते हैं? शिव बाबा है सर्व शक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। फिर कौन सी शक्ति? पतित से पावन बनने की युक्ति, ये बाप बताते हैं। पवित्र बनने की भी ताकत युक्ति परमात्मा से मिलती है, योग से शक्ति मिलती है। अब बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम सत्व प्रधान बन थे, तुम कितने ऊंचे थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? योग लगाना है, योग लगाएंगे पाप भस्म हो जाएंगे। अथॉरिटी तो बाप ही है ना। तो चित्रों में दिखाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन्होंने द्वारा बैठ शास्त्र वेदों का राज समझाया। अब चक्कर का राज, नेक्स्ट पॉइंट, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जो स्थापना की उसकी पालना भी तो जरूर करेंगे ना। तो ब्रह्मा ही सुसर विष्णु बनते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि रूहानी नॉलेज कैसे किसको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर खोल देवे, नमे सेंटर। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति, दो वर्ष से मिलते हैं, इसमें सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के चाहिए, थोड़ा सा स्थान चाहिए, बस और कुछ नहीं। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बात एक ही है, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, ये मनुष्य देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूछेंगे लोग तुमसे, पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे इतने बाबा के बच्चे, ढेर बच्चे हैं, पापा कहते मेरे बच्चों द्वारा ही खर्चा चलता है, हम किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करते। अरे बीके, बाप को इतने ढेर बच्चे हैं और तुम पूछने आए हो खर्चा कैसे चलता है। ये बच्चे ही सब कुछ, उनका ही तन मन धन सफल होता है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना, विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। तो शिव को कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे डबली श्री श्री श्री, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा है ना। श्री लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, दो बार श्री श्री नहीं कहेंगे। ये सब बातें जो बाबा ने समझाई वो धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, ये सच्ची सच्ची अमर कथा है। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी का बैठ करके कथा सुनाई होगी, एक पार्वती को कथा सुनाई। हम सब आत्माएं पार्वतन में रहने वाली पार्वती, हम सब बच्चों को सुनाई, आत्मा को सुनाई। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं, तो तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, तुम पार्वती आई हो कथा सुनने रिफ्रेश होने। फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ तीन पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। जैसे बच्चा जन्मा और बारिश हो गया, भाई बारिश क्या लाएगा। तो तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने, पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे, लायक बन जाएंगे। और फिर है पुरुषार्थ पर मदार, बच्चा तो बन गए, फिर निश्चय हुआ, फिर पुरुषार्थ करेंगे, प्रारब्ध मिलेगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लड्डे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतिम खूने नाक सीन देखने के लिए बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है, निर्भय और शिव शक्ति। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। सेकंड पॉइंट है, पावन बनकर, पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है, अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव एक्सप्लेनेशन है, हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मैं कहा, मेरा स्वभाव, मेरी संस्कार, मेरी संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब ये मैं और मेरा पर समाप्त हो जाता है, इसको कहा जाता है बाप समान, ब्रह्मा बाप समान और संपूर्ण। समानता और संपूर्णता, मैं और मेरे का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को, मैंपन के घोड़े को, इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाह करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हांजी का सहयोग का हाथ बढ़ाओ। हांजी, यस प्लीज, हांजी का सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना, सबकी दुआएं मिलेगी। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। एक्सप्लेनेशन, मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। वो एक रस स्थिति कैसे बनेगी? उसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। विघ्न को ईश्वरीय लगन से समाप्त करो। तीसरी बात, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शक्ति, ओम शक्ति।
योग के बाद
अच्छी बात, अब योग में बैठेंगे, इसके बाद आज का प्रोग्राम है।
उस तरफ को
कल 26 जनवरी मनाया, संविधान, हमारा संविधान गॉडली संविधान है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, यानी मर्यादाएं संपन्न जीवन। ओके जी,
आप सभी को एक विशेष खुशखबरी दे रहे हैं। कल जैसे दीदी जी बता रहे हैं, माउंट आबू में भी सारे भारत भर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो यहाँ जो परेड और जो भी कार्यक्रम चला उसके अंत में यहाँ पर कई लोगों को सम्मानित किया जाता है, उनके अलग अलग कार्य में, अलग अलग क्षेत्र में उनका जो कार्य है उसको सराहा जाता है। तो हमारी जो मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हैं, उनके 101 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनको भी सम्मान दिया गया है। हाँ, ताली बजा सकते हैं। और उन्होंने जो समाज के सुधार में अपना सराहनीय योगदान दिया है, और उनकी आयु 101 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में ये एक सम्मान पत्र प्रशासन के द्वारा दादी जी के प्रति दिया गया है। और साथ साथ आप लोगों को पता है, कल एक झांकी हमारी प्रस्तुत की गई थी, उस झांकी के लिए अपने को सेकंड प्राइज मिला है, वो भी दीदी जी के सामने रखा है। अभी सभी योग में बैठेंगे, उसके बाद विदेशियों का प्रोग्राम सुनाया जाएगा।